राजवंशी बंगले की सुबह हमेशा की तरह सजी धजी और शांति से भरी हुई थी। हॉल में काम करने वाला स्टाफ इधर उधर काम में व्यस्त थे, लेकिन ऊपर की मंजिल पर अखिल अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा होकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने हल्के ग्रे रंग का सूट पहन रखा था और टाई बांधते हुए उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे हल्की सी सूजन साफ छलक रही थी। शायद पिछली रात की बेचैनी अब भी उसके भीतर थी। उसी वक्त पीछे से दरवाजा धीरे से खुला और शालिनी अंदर आई। उसकी चाल तेज थी, आंखों में गुस्से की परछाई। उसने आते ही आवाज कड़ी कर दी, अखिल कल रात पार्टी में तुम अचानक कहाँ चले गए थे? सब लोग मुझे अकेली देखकर अजीब नजरों से देख रहे थे, क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं? अखिल ने आईने में उसकी झलक देखी और तुरंत नजरें फेर ली। टाई की गांठ कसते हुए उसने सपाट आवाज में कहा, शालिनी प्लीज सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे ऑफिस के लिए पहले ही बहुत देर हो रही है। वैसे भी मेरा सिर फट रहा है दर्द से, मैं किसी भी तरह की बहस के मूड में नहीं हूँ। शालिनी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, बहस? तुम्हें ये बहस लगती है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे। क्या ये मेरा हक नहीं कि मुझे पता चले? अखिल ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, जो हुआ हो गया, अब मुझे ऑफिस जाना है, बात खत्म। शालिनी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तो अब इतनी भी इज्जत नहीं बची कि मुझे दोषक समझा सको? मंगनी करके भी अगर ऐसे ही चुपचाप भागते रहोगे तो क्या मतलब है इस रिश्ते का? अखिल ने गहरी सांस ली और सूट की जेब से घड़ी निकालकर हाथ पर पहन ली। उसकी आवाज ठंडी थी, शालिनी सच कह रहा हूँ, मुझे इस वक्त ये सब सुनने का वक्त नहीं है, और तुम जितना सोच रही हो उतना कोई बड़ा राज नहीं है, मुझे बस अकेले रहने की जरूरत थी, अब प्लीज। शालिनी उसके सामने खड़ी होकर पल भर को रुकी। उसने महसूस किया कि अगर वो इस वक्त और ज्यादा झगड़ेगी तो बात और बिगड़ जाएगी। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ा और उसने नरम स्वर में कहा, ठीक है अखिल, मैं झगड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुमसे इतना जरूर चाहती हूँ कि मुझसे बातें छुपाओ मत, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अखिल ने बिना कोई भाव बदले उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान और एक अजीब सी दूरी झलक रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान बनाने की कोशिश की, मगर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। मैं ठीक हूँ शालिनी, बस तुम्हें लगता है कि मैं दूर हो रहा हूँ, लेकिन सब नॉर्मल है, अब मुझे निकलना होगा। उसने सूट की जैकेट उठाई, लैपटॉप बैग कंधे पर डाला और बिना कुछ और कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया। शालिनी उसकी पीठ देखती रह गई। उसके दिल में एक टीस उठी, अखिल मानो उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहता। नीचे ड्राइववे में अखिल की कार तैयार खड़ी थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर बाहर निकला और ड्राइवर को इशारा करते हुए खुद स्टीयरिंग पर बैठ गया। इंजन की आवाज गूंजी और कार बंगले से बाहर निकल गई। अखिल के जाते ही पीछे से शालिनी को किसी की आवाज सुनाई दी, अरे शालिनी बेटा, सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शालिनी ने मुड़कर देखा, ये अखिल की माँ सरोज राजवंशी थी। साड़ी में लिपटी, चेहरे पर गरिमा और आंखों में अनुभव की चमक, वे हमेशा की तरह ठाट से सीढ़ियां उतर रही थी। सरोज ने पास आकर कहा, कल रात की पार्टी कैसी रही? बहुत लोग आए थे ना? शालिनी ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, पार्टी तो ठीक रही, पर अखिल बीच में ही अचानक चला गया, मुझे अकेला छोड़कर, बहुत बुरा लगा मुझे, समझ नहीं आता उसे क्या हो जाता है। सरोज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बेटा ये सब नई बात नहीं है, मैं जानती हूँ उसका दिमाग किस वजह से भटकता है, और इसकी जड़ सिर्फ एक ही है, वो रैना। शालिनी की आंखें चौक उठी, रैना? हाँ, सरोज ने आंखें तरेरते हुए कहा, डिवोर्स हुए एक साल हो चुका है, फिर भी वो लड़की बार बार सामने आ जाती है, न जाने क्यों उसके आसपास मंडराती रहती है, ये ठीक नहीं है, उसे एक दिन सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी वो अपनी हद में रहेगी। शालिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रही हैं आंटी, कल रात भी पार्टी में वो आई थी और पता नहीं क्यों अखिल अचानक उसके बाद ही गायब हो गया, मुझे गुस्सा आता है उसे देखकर, शायद वही वजह रही होगी। सरोज की आंखों में गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई। तो फिर साफ है बेटा, अब हमें ही कुछ करना होगा, उस लड़की को उसके रास्ते पर लाना होगा, वरना वो बार बार हमारे घर की शांति बिगाड़ेगी। शालिनी चुप रही, उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये संतोष भी था कि कम से कम अखिल की माँ उसकी तरफ थी। पर इस खामोश सुबह के पीछे एक नए तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। ये है मेरी दूसरी नॉवल, ये इश्क बड़ा बेदर्दी, हाँ वो इंसान नहीं शैतान है, लेकिन तू उसकी दवा। ऐशा, एक मासूम और होशियार कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी अब तक किताबों, सपनों और छोटी छोटी खुशियों में सिमटी थी, अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां उससे एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। एक टूटी हुई माँ उसके सामने हाथ जोड़ती है, तू ही उसकी दवा है, और ऐशा को शादी का प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन ये शादी कोई प्रेम भरा बंधन नहीं बल्कि एक ठोस समझौता है, रिश्ता उस इंसान से जिसे कॉलेज वाले प्रोफेसर कहते हैं, अर्जुन कपूर, जिसके दो रूप हैं, एक अच्छा दूसरा क्रूर। वो एक ऐसा पुरुष है जो दिल से नहीं जख्मों से सोचता है, जिसकी आंखों में प्यार नहीं अतीत की राख चलती है, और जो अपनी ही परछाई से डरता है क्योंकि उसका अंधेरा खुद उसकी रूह को खा चुका है। ऐशा इस रिश्ते को स्वीकार करती है, बट नॉट आउट ऑफ लव, बल्कि एक माँ के आंसुओं की लाचार पुकार के आगे झुककर। लेकिन क्या ये समझौता कभी एक रिश्ता बन पाएगा? क्या एक मासूम लड़की एक ऐसे मानसिक रूप से घायल इंसान को ठीक कर सकती है जो लोगों की भावनाओं से नहीं उनके खून से खेलता है? क्या प्यार वहाँ पनप सकता है जहाँ हर दीवार डर और हर खामोशी एक चीख बन चुकी है? ये एक ऐसी कहानी है जहाँ रिश्ते दस्तखत से शुरू होते हैं और तड़प की आग में तपकर असली इम्तिहान में बदलते हैं, जहाँ एक लड़की अपनी मासूमियत से एक रूह की राख को छूने की कोशिश करती है और एक आदमी अपने अंदर के दानव से लड़ते हुए इंसान बनने की चाह में तड़पता है। ये कहानी है एक समझौते की जो मोहब्बत की सबसे मुश्किल इब्तिदा बनती है, एक ऐसे रिश्ते की जहाँ हर दिन एक जंग है और हर जंग के बाद एक उम्मीद।